मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 7 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं इस बात के लिए बाध्य हूं कि कल मैंने जिस विषय को उठाया था या यूं कह लीजिए कि जिस विषय को छेड़ा था उसे आज मैं पूरा करूं, तो इसलिए और कल मैंने आप सबसे इसकी अनुमति भी ले ली थी तो आज मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा। यानी कि अभी भी आज का जो डेली ऑडियो लेक्चर है वह पुराने पैटर्न पर, पुराने मतलब पिछले दो दिनों से जो पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पर आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आपने बेरोजगारी के बारे में कुछ तथ्य जाने हैं और मुझे लगता है कि इसे जानना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस बार के आप बजट में देखिए बेरोजगारी के लिए स्पेशली कदम उठाए जाने की बात कही गई है और नो डाउट कि बेरोजगारी के बारे में लगातार अखबारों में भी काफी कुछ लिखा जा रहा है कि भारत का युवा किस तरीके से संकट में है, किस तरीके से लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो NDTV चैनल है उसमें जो 9 बजे से रवीश का प्रोग्राम आता है, रवीश जी का प्राइम टाइम, उसमें बेरोजगारी को लेकर के और खासकर जो शिक्षित बेरोजगारी है उसको लेकर के कितने एपिसोड उन्होंने किए हैं। हालांकि उनके जो शिक्षित बेरोजगारी का जो हिस्सा था वो सरकारी बेरोजगारी तक ज्यादा सीमित रहा है, सरकारी बेरोजगारी की ही बात होती रही है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने सारे पद पड़े हुए हैं लेकिन उन्हें नहीं भरा जा रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में पद हैं, राज्य सरकारों में पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं जबकि कार्य काम का नुकसान हो रहा है उन्हें नहीं भरा जा रहा है। आपने गौर किया होगा कि केवल ये नहीं कि भरा जा रहा है, भरने की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं इसके बावजूद भी नहीं भरे जा रहे हैं। और भयावह तस्वीर यह है कि अगर 100 पद निकले हुए हैं तो पता लगा कि उसके लिए लाखों स्टूडेंट आ रहे हैं भर्ती होने के लिए, तो यह संकट उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। देखिए, जब हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जब टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं सभी टॉपिक पर आप बराबर तैयारी नहीं कर सकते कि सभी को आप एक जैसा मानकर चले, कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है और ज्यादा अच्छा होगा कि हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर स्पेशल तैयारी करें, उन पर विशेष तैयारी करें और बाकी जो टॉपिक हैं जो सेकेंड ग्रेड के या थर्ड ग्रेड के हैं उनको एक सामान्य रूप में लेकर के चले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें आप बिल्कुल छोड़ दें और अपने को केवल जो सबसे अच्छे टॉपिक है उन तक सीमित करें, उनकी भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए लेकिन थोड़े से सामान्य स्तर पर। और ये कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्धारण हम इसका कैसे करेंगे? तो देखिए, निर्धारण के तरीके यही होते हैं। जैसे अभी मैंने NDTV चैनल की बात बताई, बजट में आप देखिए कि बजट में सरकार ने जो 3 बिंदु दिए हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, शिक्षा, रोजगार और जो तीसरा है वो है कृषि। ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर पर गवर्नमेंट का जोर रहेगा ये बात कही गई है और खासकर ये आपके जो इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत ही क्लियरली गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, उसको लेकर के फिर बातें भी आगे की जो है वो बढ़ाई गई हैं और आगे बढ़ेंगी भी। तो मित्रों देखिए, रोजगार तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से ही रहा है लेकिन इन परिस्थितियों में जो मैंने NDTV की बात कही, जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट की बात कही, मुझे लगता है कि इस साल जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए ये फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, राइट? अब होता यह है मित्रों कि जब बेरोजगारी पर अगर प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बड़े सामान्य किस्म के आपको दिखाई देंगे, ऐसा नहीं कि वो बहुत आपसे एक्सपर्टीज, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं और उसकी मांग की जा रही है, नॉट एट ऑल। जनरली मैंने देखा है कि जो इस तरह के टॉपिक आते हैं जो बड़े कॉमन स्टैंडर्ड जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, अब देखिए बेरोजगारी है ये कॉमन है, गरीबी है कॉमन है, जनसंख्या पर पूछा जाएगा तो वो कॉमन है, महिलाओं की समस्याओं पर पूछा जाएगा तो ये कॉमन, ये सबके सब कॉमन टॉपिक्स हैं, है ना, बहुत स्पेशलिस्ट की मांग नहीं करते हैं। इसमें मैंने देखा है पिछले सालों के पेपर्स को पढ़ने समझने के बाद पाया है कि आपसे अपनी अप्रोच पूछते हैं, ज्यादातर उपाय पूछते हैं कि ठीक है जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं और वो आपने तैयारी करने के दौरान उनको पढ़ा भी होगा, समझा भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या आप और कुछ सुझा सकते हैं, कुछ और बता सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, सच बात यह है कि एक स्टूडेंट 21 साल में आपको सिविल सर्विस के लिए अलाउ कर दिया जाता है, उससे ये अपेक्षा करना कि वो बिल्कुल कोई क्रांतिकारी विचार ही सामने रख देगा तो थोड़ा सा उसके साथ अन्याय करना भी होगा, और उसकी वो अपेक्षा भी नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर आपसे चाहते हैं कि आप जब अपनी बात कह रहे हैं तो वो व्यावहारिक हो, प्रैक्टिकल हो और लॉजिकल भी हो, यानी कि वो तार्किक रूप से सुनने में सही लगे कि हां ऐसा किया जा सकता है। तो मित्रों, इसी के लिए फिर हम अपना अध्ययन करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों की चीजों को पढ़ते हैं, और उनको पढ़ने के बाद सही मायने में हमारे दिमाग में ऐसे तत्व अपने आप आने भी लगते हैं। तो मित्रों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं दो पॉइंट आपके सामने खासकर रखने जा रहा हूं। उसका जो पहला पॉइंट होगा कि सरकार की स्कीम क्या है, वो मैं केवल आपको नाम बता करके छोड़ दूंगा, जो मुख्य मुख्य है उसके बारे में आप लोग अपनी तरफ से चाहे तो पढ़ सकते हैं, और थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी डिटेल में आपको होनी भी चाहिए। मेरे डेली ऑडियो लेक्चर में उतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उनके बारे में भी आपको बताऊं, लेकिन इतना बता देना ही आपके लिए पर्याप्त होगा कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, और फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि किन किन सेक्टर्स में बेरोजगारी को समाप्त करने की संभावना है, यानी कि इन बेरोजगारों को वो सेक्टर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। बस थोड़ी सी इन बातों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जहां तक सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, मित्र, उनके नाम आपने सुने हुए हैं, काफी समय से चल रही है ये योजनाएं, जैसे मेक इन इंडिया भी कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा है। स्टार्टअप्स को आप ले लीजिए तो स्टार्टअप भी कहीं ना कहीं बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की ही एक प्रक्रिया है। स्किल इंडिया तो बहुत बड़ी योजना है ही, लेकिन स्किल इंडिया की एक जो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि देश में ये माना जाता है कि लगभग 1.25 करोड़ लोग हर साल रोजगार की तलाश कर रहे हैं, नए लोग जुड़ते हैं, 1.25 करोड़ लोग शिक्षित बेरोजगार कतार में खड़े हो जाते हैं, और हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, यानी कि हमारा जो प्लान है जिनको हम प्रशिक्षित कर पाएंगे, उसकी संख्या है 35 लाख। सोचिए, साल में 35 लाख। अब 1.25 करोड़ के अगेंस्ट 35 लाख कुछ भी नहीं है, बाकी लोग अप्रशिक्षित रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बट नेचुरली कि आप अपने प्रशिक्षण के दायरे को आप बढ़ाइए, लेकिन चलिए कम से कम कुछ तो हो रहा है। तो इसके लिए एक उपाय आप सुझा सकते हैं कि ये जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, ये छोटी छोटी जगहों पर खोले जाएं, गांव में खोले जाएं, बड़ी संख्या में खोले जाएं, और इनकी जो जिम्मेदारी है देखें, क्योंकि फाइनेंस का मामला आता है फिर इनमें, तो देखें कि किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको चलाया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। खैर चलिए, वो एक अलग बात हो गई, वो फिर हम लोग भटक जाएंगे। तो स्किल इंडिया बहुत बड़ा अभियान इसके बारे में है। फिर आप देखिए कि जो दूसरे जो रोजगार से संबंधित सीधे सीधे जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसका नाम आपने सुना है, समन्वित विकास कार्यक्रम, इसका भी नाम आपने जरूर सुना होगा, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। यहां जो मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कह रहा हूं, उसका संबंध मनरेगा से है। तो आप देखिए कि जो योजनाएं चल रही हैं, इसमें हर लेवल के युवाओं को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। स्टार्टअप अगर आप ले लीजिए तो जो प्रशिक्षित लड़के जो युवा हैं हमारे, उनके लिए है ना। फिर मेक इन इंडिया जो थोड़े से उद्यमी किस्म के लोग हैं उनके लिए है। स्किल इंडिया मध्यम निम्न मध्यम, जिनके पास पढ़ाई लिखाई तो हो गई है सामान्य तौर तरीके की, लेकिन जिन्हें कुछ विशेष आता नहीं है उनके लिए, तो और जो बिल्कुल ही एकदम श्रम पर आधारित है उनके लिए मनरेगा ऑलरेडी है ही है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो रोजगार प्रोवाइड कर सके। मित्रों, अब मैं थोड़े से अगले पॉइंट पर बात करूंगा जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि किन किन क्षेत्रों में हमें काम करने की जरूरत है, ताकि बेरोजगारी की समस्या को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो हमारे नियंत्रण में आ जाए, ये क्रॉनिक न बने। देखिए, जो संकट हो रहा है वो हो रहा है टेक्नोलॉजी से, इसे तो हमें मानना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली जा रही है, मनुष्य को टेक्नोलॉजी स्थानापन्न करती चली जा रही है। जहां 10 लोगों की जरूरत थी वहां पता लगा एक कंप्यूटर काम कर रहा है, और अब तो जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होने लगी है और उसके प्रयोग भी होने लगे हैं, तब से तो लोग इतने ज्यादा चिंतित हो गए हैं। और ये चिंता केवल भारतीय स्तर पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग चिंतित हो गए हैं कि अब क्या होगा। ऑपरेशन भी अब पता लगा कि रोबोट कर रहे हैं। मजेदार बात है कि रेस्टोरेंट में बैरे का काम भी रोबोट कर रहे हैं। जो आपके जो लॉ एजेंसीज हैं, जो कानून की एजेंसियां हैं, समझिए लॉ प्रैक्टिस जहां की जाती है, वहां पर जो आपके पास ऐसे सुपर कंप्यूटर आ गए हैं कि आपका सारा का सारा कैलकुलेशन करके वो दे देंगे, आपको बता देंगे कि भैया कहां पर क्या रेफरेंस है, लोगों की जरूरत नहीं है, आप लाइब्रेरी में बैठ करके आप माथा मार रहे हैं, आपको पॉइंट वो प्रोवाइड कर देंगे। ब्लॉकचेन आने के बाद में जो फाइनेंस का सारा मैटर है वो समझ लीजिए कि वो लेकर के चला जाएगा। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने रोजगार के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा किया है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तो मित्रों पड़ेगा। अब भारत क्या करे ऐसी सिचुएशन में, ये सवाल उठता है कि भारत को फिर क्या करना चाहिए। मित्रों मुझे लगता है, देखिए क्षेत्र बहुत से हैं, लेकिन मैं मूलतः तीन चार पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं बता दूं कि मैं कोई बेरोजगारी की जो समस्या है उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करा रहा हूं, है ना। उसके जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं मैं आपके लिए केवल एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा हूं इंपॉर्टेंट बिंदु के माध्यम से कि कैसे आपको इस टॉपिक को समझना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, और फिर इन्हीं फ्रेम में, इसी फ्रेम में आपको इसे लगातार अपडेट करते चले जाना है। मुझे फ्रेंड्स तीन सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण लग रहे हैं। पहला तो मुझे लगता है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र में अभी भी रोजगार उपलब्ध कराने के बहुत जबरदस्त साधन हैं। कृषि क्षेत्र की जगह इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिए, आप कह लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र कह लीजिए। कृषि क्षेत्र जब हम कहते हैं तो सामान्यतया ऐसा लगता है कि केवल खेती की बात की जा रही है, जब हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं तो उसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड हो जाती है। अगर आप चाहें तो कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। कृषि क्षेत्र में कैसे रोजगार मिल सकता है? देखिए जब हम स्ट्रेट तरीके से सोचते हैं तब तो लगता है कि नहीं, खेती की जमीन ही नहीं है और वहां पहले से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो रोजगार की गुंजाइश रही कहां गई है। लेकिन जब आप उसको थोड़े से अलग एंगल से सोचेंगे तो आपको कुछ चीजें वहां दिखाई देने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर बागवानी थोड़ा सा प्रशिक्षण की मांग करता है। खेती के साथ साथ आप बागवानी को लेकर के आ सकते हैं, उसी के साथ ही साथ आप पशुपालन को लेकर के आ सकते हैं कि मॉडर्न तरीके से पशुपालन का काम किया जाए, वृक्षारोपण को लेकर के आ सकते हैं। खासकर अब आप देखेंगे कि खेती भी हमारी काफी कुछ जो है ना मशीनीकृत होती जा रही है, उसमें मशीनें आ गई हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा देश है और कृषि का इतना बड़ा क्षेत्र है, उन मशीनों को की मरम्मत करने की ट्रेनिंग अगर दे दी जाए तो कितने सारे लोग उसमें खप जाएंगे, कल्पना करके देखिए। तो इस माध्यम से हम कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है मित्रों, वो थोड़ा सा आप कह लीजिए कि सर्विस सेक्टर का है, वो अलग सर्विस सेक्टर ना कहे हस्तशिल्प कह लीजिए कि छोटे छोटे काम है जिसमें थोड़ी सी कलाकारी की भी जरूरत होती है और थोड़ी सी यूं कह लीजिए कि यांत्रिक जानकारी की भी जरूरत होती है, और इस जरूरत के आधार पर आप बहुत से युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मैकेनिक बना दीजिए, गांव गांव में आप देखिए कि मोटरसाइकिल पहुंच गई है तो कम से कम वो उनकी मोटरसाइकिल कोई सुधारने वाला वही है। कारपेंट्री सिखा दीजिए उनको, हस्तशिल्प की तो बहुत ज्यादा मांग होने लगी है। आप देखिए कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में सरकारें भी कितना ज्यादा प्रोत्साहन दे रही हैं, कितनी ज्यादा छूट दे रही हैं, तो हस्तशिल्प को भी आप अपने स्किल में ले आइए तो उससे काफी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप जो अगला सेक्टर हो सकता है हेल्थ को आप देख लीजिए, भारत में कितनी बड़ी समस्या हेल्थ की है। अब हेल्थ को हमने MBBS डॉक्टर के भरोसे छोड़ दिया है, उतने डॉक्टर हमारे नहीं बन तैयार हो पा रहे हैं, अगर तैयार हो भी जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते। तो कुछ एक ऐसा सामान्य सा कोर्स भी तैयार किया जा सकता है कि लोगों को बेसिक जानकारियां दे दी जाए हेल्थ की, तो कम से कम बेसिक समस्याओं को तो सुलझा ले, वो खांसी बुखार सर्दी जैसी समस्याओं को, बाकी को आप MBBS और MD के हाथों में छोड़ दीजिए। तो ये जो हेल्थ का सेक्टर है ये बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर, देखिए बैंक अब धीरे धीरे गांव तक पहुंचने लगे हैं, बैंकिंग में बहुत जबरदस्त तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। और वैसे भी जनधन योजना के तहत आप देखते हैं कि कितने खाते खुल गए हैं, तो वहां भी एक सर्विस सेक्टर को कह लीजिए, सर्विस सेक्टर के तहत आते हैं, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन ये सब कुछ होगा तब जब आप ग्रामीण क्षेत्र की तरफ देखना शुरू करेंगे। अगर शहर तक सीमित रखेंगे अपने आप को, तो फिर रोजगार के अवसर आपको दिखाई नहीं देंगे। दो बातें और हैं मित्रों, तो ये दो बातें मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला तो यह कि सरकार को जो हमारे यहां लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, इनको बहुत इंसेंटिव देना चाहिए। आज भी हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसमें आप देखिए कि 50% से थोड़ा सा ही कम है, अदरवाइज पूरा एक्सपोर्ट हमारे यहां जो करने वाला सेक्टर है वो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है। ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात इससे भी यह है कि जो रोजगार सबसे ज्यादा प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है ये सब छोटे सेक्टर है, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके पास तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि वो सब मशीनों से काम करा रहे हैं, वहां लोगों के लिए जगह नहीं है। जबकि ये जो छोटे उद्योग हैं ये लोगों पर निर्भर करते हैं। और ये माना गया है, मतलब पूरे इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि मान लीजिए कि मैं 5 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री लगा रहा हूं, और 5 करोड़ रुपए की एक बड़ी इंडस्ट्री लगा करके मैं मान लीजिए कि 100 लोगों को रोजगार देता हूं, 5 करोड़, रोजगार के अवसर कितने, 100, और इंडस्ट्री का रूप क्या है, बड़ा, ये बड़ा उद्योग है। हालांकि ये बड़ा उद्योग होता नहीं है, मैं केवल एक समझाने के लिए कह रहा हूं। अब अगर मैं 5 करोड़ रुपए की इसी लागत का इस्तेमाल छोटे उद्योगों में करता हूं, और मान लीजिए कि छोटे उद्योग में मैंने 50-50 लाख के 10 उद्योग लगा लिए, तो छोटे उद्योग हो गए, तो मेरे पास अब 10 उद्योग हो गए, तो अभी टोटल लागत मेरी 5 करोड़ की हुई, लेकिन पता लगा कि मैं उसमें 500 लोगों को रोजगार दे रहा हूं, 5 टाइम्स। मतलब ये जो लघु उद्योग होते हैं ये बड़े उद्योगों की तुलना में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के मामले में 5 टाइम्स अधिक होते हैं, तो हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए। और मित्रों, जो पर्यटन का क्षेत्र है वो तो अद्भुत क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत पर्यटन के मामले में कमाल कर सकता है, और आप देख रहे हैं कि अभी की जो सरकार है वो लगातार पर्यटन के लिए कोशिश भी कर रही है, क्योंकि पर्यटन का एक सबसे बड़ा जो पक्ष होता है इसके फेवर में दोस्तों वो ये है, एक तो लागत बहुत कम लगती है और ये चौतरफा रोजगार प्रोवाइड करता है। आप देखिए कि एक पर्यटन स्थान को अगर आप पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर देते हैं तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है, होटल, फिर होटल इंडस्ट्री में, फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, फिर हस्तकला, फिर गाइड, पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिलता है, अलग अलग तरह के लोगों को रोजगार मिलता है। तो पर्यटन का क्षेत्र तो अद्भुत है, और दुनिया के बहुत से देश तो ऐसे हैं जो आज विकसित भी हैं, या कह लीजिए कि बहुत से ऐसे शहर हैं, ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो केवल पर्यटन के दम पर आज बहुत टॉप पर पहुंचे हुए हैं। तो पर्यटन तो भारत का अगर विकसित हो जाता है तो आर्थिक स्थिति के मामले में भी, आर्थिक वृद्धि के मामले में भी, और रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में भी अद्भुत सफल क्षेत्र हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ बातें आपसे रोजगार के संदर्भ में की हैं। मुझे लगता है कि इनको, इन दोनों एपिसोड को सुनने के बाद आपकी जो दृष्टि है वो थोड़ी अब पहले की तुलना में जरूर ज्यादा स्पष्ट हुई होगी। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।